दिव्यों सज्जनों, आप सबको नमस्ते। गीता के चैप्टर 18 की हम चर्चा कर रहे थे, आज 41 श्लोक नंबर है। मेरे साथ मिलकर के बोलिएगा, ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम, क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। कोई भी सोसाइटी हो उसमें आपको नेचुरली चार तरह के लोग मिलेंगे, कोई कम होगा कोई ज्यादा होगा, पर चार तरह के लोग मिलेंगे। कुछ इंटेलेक्चुअली बड़े हाई लेवल के होंगे जो पसंद करते हैं इंटेलेक्चुअल लाइफ जीने का, दूसरा जो जिनका नेचर है थोड़ा डोमिनेट करने का, रूल करना, डोमिनेट करना किसी भी उपाय से, तीसरा जो प्रॉस्पेरिटी को फेवर करते हैं जिनके पास धन हो, संपत्ति हो, प्रॉपर्टी हो वगैरह वगैरह, चौथी कैटेगरी जिनके पास इनमें से कोई भी गुण बहुत ज्यादा नहीं है, ना इंटेलेक्चुअली बहुत आगे हैं, ना पावर है, ना ऐसा कोई बड़ा एम्बिशन है, ना ऐसा कुछ उनके टैलेंट है कि वो पैसा कमा सकें या प्रॉस्पर बन सकें। तो जो सर्विस क्लास है, जो वर्कर क्लास है, तो आप ये कोई भी सोसाइटी में आपको ये चार क्लास मिलेंगे। पर हमारे ऋषि मुनियों ने हजारों साल पहले इंसान की, मनुष्य की इस तरह की जो एक नेचुरल एटीट्यूड है उसको उन्होंने स्टडी करके सोसाइटी को चार भाग में क्लासिफाई किया, और इसी को हम कहते हैं वर्ण व्यवस्था, वर्ण सिस्टम। वर्ण क्या होता है? चूज करना, जो जैसा भी उसके इनहेरेंट नेचर है या एटीट्यूड है उसके बेस पर जो वोकेशन या प्रोफेशन चूज करता है उसके अकॉर्डिंग वो उस क्लास को बिलोंग करता है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिकली डेवलप्ड हुआ सोसाइटी में ये चीजें आपको दिखेगा, पर इस तरह हमने कभी क्लासिफाई करने की बहुत लोगों ने पहले कभी सोचा ना हो। आप जिस सोसाइटी में रहते हैं या आपके आसपास के सोसाइटी में भी यही चार क्लास होते हैं, द इंटेलेक्चुअल ग्रुप है, जो पावर हैंकरिंग ग्रुप है जिसमें इंटेलेक्चुअल में जो एकेडमिशियंस है, एडवाइजर्स है, पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़ाते हैं, पढ़ते हैं, डिसीशन मेकिंग में, पॉलिसी मेकिंग में जिनकी शेयरिंग रहता है, जो एडवाइस करते हैं, गाइड करते हैं, खुद को भी एनलाइटेन करते रहते हैं, एक ग्रुप है। दूसरा ग्रुप जो पावर में एंजॉय करता है, वो पॉलिटिक्स का पावर हो, रूल करने का हो, आर्मी का हो, पुलिस का हो, वो गन का पावर हो, इंटेलेक्ट का पावर हो, जो रूल करना पसंद करता है, जो डोमिनेट करता है। तीसरा जो प्रॉस्पेरिटी को एंजॉय करता है कि बहुत धन आए, बहुत प्रॉस्पर बने, बिजनेस फैले, खेती हो, वो हो, कैटलिंग हो, जो भी हो। पहले कम कैटेगरीज होते थे प्रॉस्पर होने के लिए, आजकल सोसाइटी डेवलप हो रहा है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रहा है, तो हमारे पास हजारों ऑप्शंस हैं प्रॉस्पर बनने के लिए। और चौथा ग्रुप आपको कहीं भी मिलेगा, जो पढ़े लिखे ज्यादा ना हो, जिनके पास पैसे भी ज्यादा ना हो, जिनके पास पावर भी ज्यादा ना हो, जो वर्किंग ग्रुप है, जो काम करते हैं, जो फिजिकल काम ज्यादा करते हैं। ये जो वर्ण व्यवस्था है, कृष्ण गीता में कहते हैं ये भी वो सत्व रज तमो गुणों के आधार पर व्यक्ति के नेचर या टेंडेंसीज अलग अलग होते हैं, तो अलग अलग तरह के प्रोफेशन चुनते हैं। ये प्रोफेशन को चुनने के पीछे भी उनका अपना एक एटीट्यूड या टैलेंट रहता है। तो देवियों सज्जनों ध्यान रखिएगा, जो मजेदार बात है कि प्रोफेशन को जो खुद चुनता हो, जिसमें ये फ्रीडम हो कि मैं अपने प्रोफेशन को चुनूं, अगर फैमिली से या और किसी कारण से इम्पोज किया गया हो, थोपा गया हो, फिर वहां तो मुश्किल होता है। आप ये नहीं कह सकते कि वो बाय नेचर ऐसा है, वो तो बाय फोर्स ऐसा है। कोई अगर डॉक्टर है, इंजीनियर है, पॉलिटिशियन है, लॉयर है, कुछ भी है, अगर वो अपनी मर्जी से है तब तो वो जो वर्ण आप इसमें लागू करेंगे कि वो बाय नेचर ऐसा है तो ऐसे ही प्रोफेशन चुना और वो उसको एंजॉय करता है इस प्रोफेशन को। पर अगर किसी कारण से फैमिली के प्रेशर है, पेरेंट्स का प्रेशर है, सोसाइटी का प्रेशर है, प्रेशराइज्ड होकर के चुनता है, मजबूरन कोई चीज चुनता है, उसकी हालत ऐसी खराब है कि अल्दो वो बहुत बढ़िया अच्छा सिंगर है, वो गाने में आगे जा सकता है, पर इतने गरीब घर का है, उसको कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता, बेचारा कोई सेल्समैन का काम करता है, तो वो तो उसकी मजबूरी है। उसके अंदर जो इनहेरेंट नेचर है, जो टैलेंट है, उसको वो किसी ना किसी कारण उसको दबाना पड़ता है। कभी कभी पेरेंट्स की बड़ा जोर रहता है कि आपको यही प्रोफेशन लेना है, आप दूसरे में कितने भी अच्छे हो, आपको यही लेना है, ये नहीं लेना है, वो अलग बात है। पर हमारे ऋषियों ने जो कल्पना की थी, जिस सोसाइटी की वर्णना की थी, वो सोसाइटी वो है जिसमें हर व्यक्ति इंडिपेंडेंटली फ्रीडम हो, फ्री होकर के अपने जो भी इनहेरेंट नेचर है, टैलेंट है, एबिलिटी है, उसके बेस पर वो प्रोफेशन को चुनता है। और वो सिर्फ प्रोफेशन नहीं होता है, उसकी ओवरऑल पर्सनालिटी भी उससे झलकता है। और वो उसकी जो स्वाभाविक गुण है उसके द्वारा क्लासिफाई होता है। तो क्या फिर है जो ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, उसको हमने कहा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एंड शूद्र। महर्षि मनु लिखते हैं, जन्मना जायते शूद्र, संस्कारा द्विजयुच्यते। आगे भी वेद पाठाद भवेद विप्र ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। तो सिंपल जो इसका जो बॉटम लाइन है कि हर व्यक्ति पैदाइशी बाय बर्थ शूद्र होता है। शूद्र का मतलब होता है जो अनट्रेंड है, अनपॉलिश्ड है, जिसमें कोई पॉलिशिंग नहीं किया गया है, जिसको ट्रेनिंग नहीं दी गई है, जिसको कोई एजुकेशन नहीं दिया गया है। अब किसी भी कारण से, वो खुद की मर्जी से हो, फैमिली का हो, सोसाइटी को, अगर वो एजुकेटेड नहीं है, अगर वो ट्रेंड नहीं है, अगर वो पॉलिश्ड नहीं है, वो शूद्र है। नेचुरली हम सब जब पैदा हुए तो हम सब अनट्रेंड ही थे, इग्नोरेंट थे, हमारे पास कोई टेक्निक नहीं था, कोई नॉलेज नहीं था, हम दुनिया के कुछ भी नहीं समझते थे। हमें तो ये भी नहीं पता था कि माँ कौन है, पिता कौन है। हमें बताया गया कि ये माँ है, माँ है, हमने भी बोला माँ माँ। तो वो जो स्टेट है हमारी लाइफ का, वो शूद्रत्व है। और सोचिए अगर हम जिंदगी भर वही बच्चा जैसा रह जाएं, 5 साल का बच्चा के जितना माइंड है, जितना समझ है, अगर 50 साल के एज में अगर मेरी उतनी ही समझ रहे तो फिर मैं बच्चा ही रहा ना। फिजिकली मैं कितना भी बड़ा हो जाऊं, मेंटली मैं उस बच्चे की तरह ही रहा, अनट्रेंड हूं, कोई समझ नहीं है दुनिया के बारे में, बहुत ज्यादा ज्ञान नहीं है। वो बच्चा होना या शूद्र होना एक ही बात है, मतलब जिसको समझ ज्यादा बना नहीं, किसी भी कारण से उसकी ट्रेनिंग नहीं हो पाई, उसमें पॉलिशिंग नहीं हो पाई, वो जो अनपॉलिश्ड व्यक्ति है। हर हम सब पैदाइशी शूद्र होते हैं। और जो ट्रेनिंग के प्रोसेस में चला गया वो फिर 3 क्लास में डिवाइड हो गया। जो इंटेलेक्चुअली बहुत आगे बढ़ गया वो ब्राह्मण कहलाता है था, जो बहुत डोमिनेटिंग नेचर का और उसी में अपनी मेहनत किया आगे, पहले राजा बनने के लिए आप फिजिकली स्ट्रांग होना पड़ता था, आपको लड़ाई की टेक्निक आनी पड़ती थी, और भी बहुत सारी चीजें मैटर करता था कि आप राजा बने, छोटा राजा या बड़ा राजा, डोमिनेट करने के लिए। आज की सिचुएशन अलग है, आज अगर आप राजा या रूलर बनना चाहते हैं आपको पॉलिटिक्स आनी चाहिए। तो चेंज, सिचुएशन चेंज हो गया। रूल करने के लिए जो टेक्निक वो चेंज हो गए, पर लोगों के कुछ लोगों के नेचर में चेंज नहीं हुआ। वो जो राज करना, तो जिन लोगों ने वो ट्रेनिंग लेकर के, पॉलिश्ड होकर के, एजुकेशन लेकर के अपने वो जो इनहेरेंट नेचर है उसको बढ़ाया, डेवलप किया और पावरफुल बने, वो क्षत्रिय बने। और जिन्होंने उस इनहेरेंट नेचर को पॉलिश करके, जिसमें उनको धन संपत्ति प्रॉपर्टी, इसको एक वर्ड में कहें कि प्रॉस्पेरिटी की ओर ज्यादा फोकस्ड किया और उसमें आगे बढ़े, विथ ट्रेनिंग, एजुकेशन, जो भी पॉलिसी, जो भी उनको जिस तरह के भी उनको ट्रेंड किया गया उससे आगे बढ़े, वो वैश्य कहलाए। जिसके पास किसी भी तरह की ट्रेनिंग नहीं है, कोई एजुकेशन नहीं है, किसी भी तरह की कोई लाइफ में मेंटली इंटेलेक्चुअली कोई ग्रो नहीं हुआ, वो शूद्र ही रह गया, बच्चा जैसा रह गया। वो फिर छोटा मोटा काम करता है लाइफ को जीने के लिए, जो भी काम छोटी सी ट्रेनिंग में, हल्की फुल्की ट्रेनिंग से, फिजिकल एक्टिविटी से किया जा सकता है। वो सोसाइटी अगर एक पिरामिड की तरह है, तो ज्यादातर जो लोग है पिरामिड का जो सबसे लोअर लेवल होता है उसमें इस तरह के लोग ज्यादा होते हैं, जिसे हम शूद्र कहते हैं। संस्कार इसी को कहते हैं कि प्यूरिफिकेशन का जो प्रोसेस है, जो ट्रेनिंग प्रोसेस है, वो ट्रेनिंग जरूरी नहीं कि कोई स्कूल या कॉलेज में हो, कैसे भी हो। बहुत सारे लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं, पर वो अपने मेहनत पर बिलियंस बिलियंस ट्रिलियंस की इंडस्ट्री खड़ा कर देते हैं, जिनके अंडर लाखों करोड़ों पढ़े लिखे लोग काम करते हैं। तो वो उनके इनहेरेंट नेचर है, उनको थोड़ा सा मौका मिलता है, गाइडेंस मिलता है, आगे बढ़ जाते हैं। तो हर व्यक्ति शूद्र वो है जो एजुकेटेड नहीं है, जिसको कोई ट्रेनिंग नहीं मिला, वो सब शूद्र कैटेगरी में आते हैं। बाद में जिस तरह की ट्रेनिंग होता है, जिस तरह की हमारी एबिलिटी होती है, हम उस तरह के लाइन चुनते हैं और आगे बढ़ते हैं, तो हमारे अलग अलग वर्ण बन जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय या वैश्य। पर उनका नेचर कैसा होता है, जो ब्राह्मण है क्या होना चाहिए और क्या बाय नेचर क्या होता है। शमो दमस्तप शौचम शांतिरार्जवमेव च ज्ञानम विज्ञानमास्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावजम। ये सब ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म है, स्वाभाविक बाय नेचर ये उसके एक्ट्स हैं, कोई सिखाने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर ये जो टेंडेंसीज है, ये जो नेचर है, ये बाय नेचर होता है। उसको थोड़ा पॉलिश करने की जरूरत पड़ता है, हर चीज को पॉलिश करने की जरूरत पड़ती है। ट्रेनिंग लेने से वो और ज्यादा मैच्योर होता है। तो वो कौन से क्वालिटीज हैं जो बाय नेचर अगर किसी व्यक्ति में दिखे, तो आप कह सकते हैं कि ये ब्राह्मण है। कहते हैं शमो, शमः, ट्रैंक्विलिटी, मन शांत रहता है। मन कब शांत रहता है? जब हम अच्छा या बुरा जो भी लाइफ में घटता है, उस सिचुएशन में अगर हमारा मन का रिएक्शन कम से कम होता है, अगर बिल्कुल ना हो तो पूरी तरह शांत है, थोड़ा हो तो ज्यादा शांत है, ज्यादा प्रॉब्लम हो, ज्यादा रिएक्शन है तो कम शांत होगा। जितना हमारा रिएक्शन ज्यादा होगा, हमारी शांति उतनी कम होगी। किसी भी चीज के साथ, एक्सटर्नल वर्ल्ड हो या इंटरनल वर्ल्ड हो, उसके साथ हमारा मेंटल रिएक्शन जितना ज्यादा होगा, ध्यान दीजिए, उतना हमारी अशांति बढ़ेगी। और जितना कम रिएक्शन आएगा, उतनी शांति रहेगी। सिंपल सी बात है। आप अपने रिलेशनशिप में भी देखेंगे, आपके घर में ऑफिस में, बाजार में, कहीं भी किसी ने आपको कुछ कहा, अच्छा कहा, बुरा कहा, जो भी कहा, कुछ किया, अच्छा किया, बुरा किया, जैसा भी किया, अगर आपका रिएक्शन, अल्दो आपके मन में कुछ चल रहा होता है, पर अगर आप उस रिएक्शन को एक्सप्रेस नहीं करते तो मामला बहुत हद तक इश्यू जो है वो 10% 20% के मामले में हॉल हो जाएगा। अगर आपका रिएक्शन निकला, कुछ भी निकला, तो इश्यू बढ़ता जाता है, इश्यू बढ़ता जाता है। कितना भी मैं राइट हूं, कितना भी रॉन्ग हूं, रिएक्शन आते ही बातें कॉम्प्लिकेटेड होने लगते हैं। जनरल एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी यही होता है। अगर आप कम रिएक्ट करने वाले आदमी हैं, ये भी भगवान की कृपा से बाय नेचर होता है। अगर आप कम रिएक्ट करने वाले व्यक्ति हैं, यकीन मानिए आपकी लाइफ में इश्यूज कम होंगे। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, वो प्रॉब्लम ज्यादा घाव नहीं बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। अगर भगवान की कृपा से आप ज्यादा ही रिएक्शनरी हैं तो प्रॉब्लम्स बहुत आएंगे। ये स्वाभाविक है, क्योंकि जब हम रिएक्शन करते हैं तो रिएक्शन का भी फिर रिएक्शन आता है और प्रॉब्लम बढ़ता जाता है। यही चीजें आप इंटरनली भी अप्लाई कर सकते हैं। माइंड अगर किसी चीज के प्रति रिएक्ट करता है, चलो छोटा एग्जाम्पल लेते हैं, आप खाना खा रहे हैं और खाने का मजा आपको मिल रहा है, मजा भी मिल रहा है, मतलब कोई बैड थिंग में नहीं, बड़ी पॉजिटिव है, खाने का मजा आप ले रहे हैं, मतलब है कि आपकी माइंड रिएक्ट कर रहा है, एंजॉय कर रहा है, तो फिर इसका साइड इफेक्ट तो होगा ही होगा। साइड इफेक्ट क्या होगा? नेक्स्ट टाइम आप उसी खाने को दोबारा खाने की चाहत रखेंगे, फिर खाएंगे, फिर खाएंगे, तो फिर दोबारा और आपके बनेगा पैशन, बनेगा धीरे 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 आप पैशनेट होते जाएंगे उस खाने के प्रति, आपकी बार बार खाने को मन करेगा। खराब लगा तो नेगेटिव रिएक्शन हुआ ना आपके माइंड में, अब क्या होगा, उस खाने के नाम पर आपको, आप दूर भागने लगेंगे, अगर कहीं बना है तो आप अवॉइड करने लगेंगे, अगर घर में बना है तो आप झगड़ने लगेंगे, बाहर खाना है कुछ बोलेंगे नहीं पर खाना कम खाएंगे, घर में फिर लड़ने लगेंगे, रोज रोज यही बना लेते हो, तुम्हें पता है मुझे पसंद नहीं है। तो माइंड अगर रिएक्ट करता है तो वो जितना रिएक्शनरी माइंड होगा हमारा उतना अशांत रहेगा, जितना कम रिएक्ट माइंड में आए उतना शांत होता है। कृष्ण गीता में कहते हैं, गीता कोई अपने आप में ओरिजिनल बुक नहीं है देवियों सज्जनों, वो अपने पुराने शास्त्रों के भाव को बड़े प्रैक्टिकल लैंग्वेज में, बड़े सिंपल लैंग्वेज में और प्रैक्टिकल वे में गीता में बताया गया है। तो कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ है, जो योगी है, जो ऋषि है, जो सन्यासी है, कैसा होता है, कहते हैं जो सुखे दुखेशु अनुद्विग्न मना, सुखेशु विगत स्पृह, वीतराग भय क्रोध, स्थित धीर मुनिरुच्यते, जो दुख में टूटता नहीं है, सुख में बहुत ज्यादा उछलता नहीं है, खुशी से राग अटैचमेंट है जो अच्छा लगा उसके साथ चिपक जाना, द्वेष जो अच्छा नहीं लगा उससे दूर रहने की कोशिश करना, इससे दूर हो जाता है, वो व्यक्ति योगी है। ये जितना आप यहां ब्राह्मण के लक्षण पढ़ेंगे वो सब योगी के लक्षण में भी आपको मिलेगा। तो जिसका मन शांत होता है, मतलब कोई भी अपोजिट सिचुएशन, द पेयर्स ऑफ अपोजिट, जिसको द्वंद्व कहते हैं, सुख दुख, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, निंदा प्रशंसा, इन पेयर्स ऑफ अपोजिट में जो जिसका मन शांत रहता है, किसी का 10% शांत रहता है, किसी के 90% रहता है, अगर 100% है तो फिर योगी है, अगर 10% है तो मामला ज्यादा खराब है, 50 तक अगर आ गए तो सर्वाइवल सिचुएशन ज्यादा अच्छा है, स्ट्रेस की लेवल कम रहेगा। शमः दमः, इंद्रियों को कंट्रोल जो कर सकता है, कर रखा है, वो भी ब्राह्मण है। इंद्रियों का कंट्रोल, आपकी जो पांच ज्ञानेंद्रियां है, आंख है, कान है, नाक है, अच्छा खाना मिला, पेट भरा हुआ है, पर खुशबू आते ही मन करता है दोबारा खा ही लूं। सोने का टाइम 9:30 का है या 10 बजे का, जो भी आपका फिक्स टाइम है, पर टीवी में वो फुटबॉल मैच आ रहा है और फाइनल है, खत्म नहीं हो रहा है, 11 बजे तक चलेगा, चलो नींद। तो मतलब हमने अपने आंखों के लिए कॉम्प्रोमाइज किया। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि फुटबॉल मैच मत किए, ये गीता ये कुछ नहीं कहता है कि आप क्या करिए या क्या ना करिए। वो कहता है जिसका सेंसेस कंट्रोल में है वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण मतलब वो ज्यादा एनलाइटनमेंट के क्लोज है, कम है तो बढ़ा सकते हैं अगर चाहें तो, नहीं चाहें तो बढ़ाने की भी जरूरत नहीं। जो जिसमें खुश है तो खुश है, उसमें कौन क्या कर सकता है। तो जब हम इंद्रियों को जो कंट्रोल करता है, कभी कभी क्या होता है ना, हम चाहकर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। जैसे नॉर्मल सिचुएशन में 11 बजे तक 12 बजे तक फुटबॉल मैच है, आपने देखा, चलो एक दिन लेट हो गया तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। पर कल आपको 6 बजे 5 बजे उठना है, आपकी 10 बजे कोई प्रेजेंटेशन है, कोई टेस्ट है, कोई एग्जाम है या कुछ ऐसा है, और आपको किसी भी हालत में 4-5 बजे उठना है, उसके लिए 9:30 तक सोना है, और आपको एक पीसफुल माइंड चाहिए सुबह, उसके बावजूद भी आपकी अंदर का जो पल्स है वो आपको फोर्स करता है कि छोड़ो ना, कोई बात नहीं, मैच देख के चलेंगे। इसका मतलब है कि सेंसेस पर हमारा कंट्रोल थोड़ा लूज है। ऐसी सिचुएशन में फिर समझ लेना चाहिए कि हमारा कौन सा सेंस लूज है। सुनने की, देखने की, ज्यादातर लोगों का जीभ का जो सेंस है वो, उसमें कंट्रोल थोड़ा कम होता है। वैसे कहा जाता है कि वो योग की उसमें कहा जाता है, अगर किसी योगी को या किसी सन्यासी को खुद को परखना हो या दूसरे को परखना हो तो खाने से परखो। तो अगर वो अच्छा खाना देख करके कंट्रोल नहीं कर पाता है तो समझ लेना कि अभी बड़ा ही एलिमेंट्री स्टेज पर है, अभी बहुत ज्यादा वो सन्यास के मार्ग पर नहीं बढ़ा है। पहले जीव से ही, हम खुद को भी जीव से ही ट्राई कर सकते हैं, मैं कितना ज्यादा अपने सेंसेस पर कंट्रोल कर सकता हूं, उसकी पहली ट्राई आप कर सकते हैं अपने खाने पर। अब खाना नहीं कि रोज का खाना रखा है जी आज मैं कम खाऊंगा, वो तो चीटिंग करने वाला टेस्ट होता है, कि बढ़िया खाना हो, जो आपके मनपसंद खाना है वही रखा हो, खुशबू से नाक भर जाता हो। पर नहीं खाना, अगर आप जीत गए उस दिन खुद को तो समझ लेना कि कुछ बहुत बड़ी अचीवमेंट आप कर सकते हैं। तो सेंसेस को जो जीत लेता है, जीता हुआ है, वो ब्राह्मण की दूसरी क्वालिटी होती है। तीसरा कहते हैं तपह। तपह क्या है? द्वंद्व सहनम। ये जो पेयर ऑफ अपोजिट हैं, अच्छा या बुरा, सुख या दुख, निंदा या प्रशंसा, गर्मी या सर्दी, जो भी एक अपोजिट पेयर्स होता है, उस सिचुएशन को, ऐसा नहीं है कि कोई भी व्यक्ति इन दोनों अपोजिट को आसानी से सह सकता है। प्रशंसा सबको अच्छा लगता है, निंदा बुरा लगता है, पर अगर कोई ट्राई करे कि मैं निंदा और प्रशंसा में एक जैसा रहूं, मेरा मन रिएक्ट कम करे, मुश्किल है। पर उसको मुश्किल को पार करने के लिए जो कोशिश है, जो एफर्ट है, उसका नाम है तप। तपस्या इसी का नाम है, और तप इसीलिए मुश्किल माना जाता है। कोई भी कठिन काम करते हुए हम क्या कहते हैं, बच्चा बड़ा तपस्या कर रहा है। तपस्या का मतलब है कि बड़ा मुश्किल काम कर रहा है। यह सेंस कहां से आया? तप के इस भाव से। तप का भाव ही है कि दोनों अपोजिट के बीच में मन को जो साधने की कोशिश करता है, और अगर कोई इस प्रोसेस पर आगे बढ़ रहा है वो ब्राह्मण है। दूसरा कहा शौच। शौच का सिंपल मीनिंग है सफाई, क्लीनलीनेस। प्यूरिटी, आपका शरीर, जिसका शरीर भी साफ हो, कपड़े भी साफ हो, बहुत सारे लोगों के साफ होता है, और बड़े मजेदार बात है, बहुत सारे ब्राह्मणों के साफ ही नहीं मिलेंगे आपको कपड़े भारत जाएंगे, सबसे गंदे कपड़े आपके पुजारी भारत में मिलेंगे पहनते हुए, ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। तो शरीर और कपड़े सिर्फ साफ की बात नहीं है कि आपका घर भी साफ हो, कपड़े भी साफ हो, शरीर भी साफ हो, ये जरूरी है। एक तो एक्सटर्नल क्लीनिंग हुआ, बाहरी सफाई, ये बहुत जरूरी है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते, इसको आप लिटिल भी नहीं, छोटा भी नहीं आंक सकते, इसका कोई कंपैरिजन नहीं, ये बहुत जरूरी है। और बड़ी मजेदार बात है, दुनिया में कोई भी डेवलप्ड सोसाइटी देखिए, कोई हैप्पी सोसाइटी देखिए, जहां खुशी बहुत है, जहां समृद्धि है, उस सोसाइटी में आपको सबसे पहला काम आप देखेंगे कि वहां सफाई बहुत ज्यादा होगी। कोई भी गरीब सोसाइटी देखिए, जहां दुख ज्यादा हो, गरीबी ज्यादा हो, और भी गलत चीजें ज्यादा हो, उस सोसाइटी की पहली नमूना देखेंगे कि वो शहर, वो देश गंदा मिलेगा। ये कनेक्टेड होते हैं, एक्सटर्नल प्यूरिटी के साथ हमारा मन की भी प्यूरिटी का कनेक्शन जुड़ता है। पर इसका अर्थ ये नहीं है जो बाहर से साफ है जरूरी नहीं कि उसका मन भी साफ हो, ऐसा नहीं है, उसके लिए भी अलग से एफर्ट करना पड़ता है, मन साफ बने। मन की सफाई क्या है? बिल्कुल वैसे ही शरीर आप नहाते हैं, क्यों? क्योंकि धूल, रोज धूल जमता है, गंदगी जमता है। कपड़े आप साफ करते हैं, क्यों? साफ कर दिया, एक बार कर लिया तो आप महीनों पहनिए नहीं करते, क्यों? पसीना लग जाता है, गंदगी आता है, धूल गिरता है, एवरी डे एवरी मोमेंट आपकी चीजें गंदा होता है, आप घर साफ करते हैं। मन भी यही होता है, बहुत सारी मन की बुराइयां हैं, लालच है, गुस्सा है, वो अटैचमेंट है, हजारों चीजें हैं, इल्यूशन है, बहुत सारी चीजें, हजारों मन की बुराइयां हैं जो जिसको साफ करने की जरूरत होती है। और ऐसा नहीं कि मन की सफाई कोई एक घंटे का काम है, दो घंटे के काम है, कपड़े की सफाई की तरह, ऐसा नहीं है, ये 24 घंटे का काम होता है और 365 दिन का काम होता है। मतलब मैं ऑफिस में हूं, घर में हूं, सो रहा हूं, खा रहा हूं, बाजार में घूम रहा हूं, लोगों से बात कर रहा हूं, किसी पार्टी में हूं, हर वक्त मन की सफाई की प्रोसेस चलती होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सुबह एक घंटा मैंने मन की सफाई का काम किया, सत्य बोला, गुस्सा नहीं किया, बाकी जो भी बुराइयां हैं उसको कंट्रोल करने की कोशिश की, बाकी 23 घंटा फ्री छोड़ दिया, ऐसा नहीं चलेगा। अब एक घंटा प्राणायाम करे, 23 घंटा ना करे, चलेगा? एक घंटा मेडिटेशन करे, बाकी 23 घंटा ना करे, चलेगा? उसका इन्फ्लुएंस आपको मिलता रहेगा, फायदा मिलता रहेगा। पर जो मन की शुद्धि है, इसीलिए महर्षि पतंजलि योग दर्शन में यम और नियम के लिए लिखते हैं, जो कि स्पेशियली मन की शुद्धि के लिए है, कहते हैं ये ऐसा व्रत है जिसको हर जगह, हर समय, हर व्यक्ति को हर सिचुएशन में करने की जरूरत होती है। सार्वभौमा व्रत, मतलब इसके लिए आप कोई एक्सक्यूज नहीं ढूंढ सकते। और अगर आपने एक्सक्यूज ढूंढा कि चलो मैंने महीने भर पहले कोशिश की थी, 15 दिन तक मैंने ये किया था, अब वो कंटिन्यू करेगा, ऐसा नहीं होगा। एवरी डे, एवरी आवर, एवरी मोमेंट आपके अंदर, हमारे अंदर वो अवेयरनेस होना चाहिए कि मन साफ होता रहे, मन साफ होता रहे। तो जो मन और शरीर, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों की सफाई करता है या साफ है, वो ब्राह्मण की अगली क्वालिटी है। आगे कहा क्षांति, क्षांति क्षमा भी होता है। क्षांति का अर्थ कोई भी परिस्थिति में आप बहुत ज्यादा एजिटेटेड नहीं होते हैं, और फॉरगिवनेस भी वहीं से आता है, क्षमा, कि जब आप किसी भी परिस्थिति में, जो नेगेटिव परिस्थिति में भी आप अपने आप को स्थिर रखते हैं, मन को स्थिर रखते हैं, तो जिसका जितना इसका लेवल ज्यादा होगा वो उतना ज्यादा ब्राह्मणत्व के करीब है, कम होगा
तो उतना कम ब्राह्मणत्व होगा। आर्जवम, आर्जवम रुजुता, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, सीधापन, सीधा साधापन, सिंप्लिसिटी, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है समझने में, सोचने में, बोलने में, करने में, मन और वाणी में ज्यादा फर्क नहीं है, अंदर और बाहर में कोई फर्क नहीं है, बिल्कुल सीधा साधा है, जो मन में है वही मुंह में आ जाता है, वही वाणी में आता है, फिजिकली वही करता है जो मन में सोचता है। उस आदमी को समझने में आपको 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगेगा। वो हंसा तो रियली हंसा, क्योंकि अंदर से हंसा, नहीं हंस रहा है तो अंदर भी नहीं हंस रहा है, अगर रो रहा है तो अंदर भी दुखी होगा। स्ट्रेट फॉरवर्डनेस, ऋजुता, सिंप्लिसिटी, सरलता, वो भी उस, अगर जिसमें ये जितनी ज्यादा क्वालिटी होगी उतना वो ब्राह्मणत्व के करीब है। जितना कॉम्प्लिकेटेड नेचर होगा, समझना मुश्किल होगा। प्रॉब्लम क्या होता है आजकल, दूसरों को समझना तो मुश्किल होता ही होता है, अभी स्थिति ऐसी होगी कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं कि मैं कैसा हूं। मतलब हम अपने आप को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं तो खुद को ही एनालाइज करने के लिए हमें घंटों लग जाता है, दिनों लग जाता है, महीनों लग जाता है, वर्षों लग सकता है। कुछ कुछ लोगों को खुद को रियलाइज करने के लिए अगर वो स्पिरिचुअल प्रोसेस में जाएं तो साइकोलॉजिकल एनालाइज करें तो उनको समझ में आता है, अच्छा मैं ऐसा भी था। पर जनरली ऐसा समझ में मुश्किल होता है, क्योंकि हम अपने लाइफ को, समझ को, अंडरस्टैंडिंग को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। पर ब्राह्मण कौन है, जो जितना ज्यादा सिंपल है, अंदर और बाहर जिसका एक है, जो मन में है वही शरीर में है, कोई आर्टिफिशियलिज्म नहीं है, कोई एक्टिंग नहीं है, कोई फोर्सफुली कुछ करने का नहीं है, अंदर और बाहर जिसका समान है, दैट इज कॉल्ड आर्जवम। ज्ञानम, नॉलेज जिसके पास है और जो ज्ञान के लिए तरसता है, परेशान हो ज्ञान को पाने के लिए कोशिश करता है, और विज्ञानम, और डीपली उस चीज को, ज्ञान तो होता है जो सरफेस नॉलेज होता है, आपको किसी पेड़ के बारे में पता है, आपको कोई पूछे पेड़ क्या होता है आप बता दोगे पेड़ ये है, उसमें ब्रांचेस होते हैं, उसमें लीव्स होते हैं, वो हरे रंग के होते हैं, उसमें अगर आम का ट्री है तो आम का फल आता है, ये नॉलेज हुआ कि आपको आम के ट्री के बारे में पता है। विज्ञान क्या है, आप डीपली जानते हो ये आम का पेड़ आम क्यों है, ये पकने पर मीठा क्यों होता है, इसके पत्ते हरे क्यों होते हैं, लाल क्यों होते हैं, ये क्यों जिंदा है, क्यों नहीं मरता, मरता कब है, इसका सोर्स क्या है, एवरीथिंग। जब आप किसी चीज की डीपली चले जाते हो वो विज्ञान बन जाता है। लाइफ के बारे में हम जानते हैं, पर लाइफ को जब डीपली समझने लगते हैं तो वो ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। दुनिया को हम जानते हैं, जब डीपली समझने लग जाते हैं वो साइंस हो जाता है। तो साइंस या जो भौतिक विज्ञान या जो मैटेरियल साइंस या जो स्पिरिचुअल साइंस है, दोनों में अंतर कुछ बेसिकली कोई अंतर नहीं है। दोनों का सिंपल मीनिंग है, किसी भी चीज को डीपली जब आपने जाना, उसकी रियलिटी को जब आप समझने की कोशिश कर रहे हैं या समझ चुके हैं, ये जो प्रोसेस जब आप कोशिश कर रहे हैं, दैट इज द प्रोसेस ऑफ स्पिरिचुअलिटी और साइंस। अगर आप समझ चुके हैं, दैट इज योर नॉलेज, ये विज्ञान है। और ये जो इस रियलिटी को जानने के पीछे पड़ा रहता है वो ब्राह्मण की अगली क्वालिटी है। आस्तिक्यम, पॉजिटिविटी, पॉजिटिविटी अबाउट व्हाट, ईश्वर, जीवन, इन चीज, नेचर, इन सबके प्रति जिसकी आस्था है, जिसका मानना है, जिसकी मान्यता है कि ईश्वर है, आत्मा है, जो भी संसार में अच्छी चीजें हैं वो हैं, इन चीजों के प्रति जो हमारा पॉजिटिव सोच है वो आस्तिक्य है, जिसको आप थेइस्ट कहते हैं, आस्तिक कहते हैं, या नास्तिकता, जो नहीं मानता, जो रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं करता, मानने को तैयार नहीं है, जो ईश्वर को मानने को तैयार नहीं, आत्मा को मानने की तैयार नहीं, वो नास्तिक्य है। और ब्राह्मण जो आस्तिक्यता कैसे भरा हुआ होता है,
जिसके अंदर केवल ज्ञान नहीं है, क्योंकि ज्ञान होने पर भी आपके अंदर नास्तिकता आ सकती है। और बड़े मजेदार बात देखिए, ज्यादातर जो हम मॉडर्न एजुकेशन में देखते हैं पिछले 200-300 साल से, जब हम बहुत ज्यादा पढ़े लिखे हो जाते हैं, हम बाई अंदर से पता नहीं क्यों ज्यादा नास्तिक बन जाते हैं। इसका मतलब है कि केवल पढ़ा लिखा हो जाने से ही कोई एनलाइटेंड नहीं होता है, वो इंटेलेक्चुअली आप बहुत प्रोफेशनल, प्रोफेशन आपका इंटेलेक्ट हो सकता है, वो एनलाइटेनमेंट जब आता है तब आपके अंदर आस्तिक्यता अपने आप आने लगता है। और जिसके अंदर वो आस्तिकता का भाव आता है वो ब्राह्मण है। यही सब चीजें ब्राह्मण के स्वाभाविक कर्म होते हैं। वो प्रोफेशन तो ठीक है, पढ़ना पढ़ाना, ज्ञान की नॉलेज बेस्ड उसकी जो भी काम है, दानम प्रतिदानम, लेना और देना, यज्ञ करना कराना, ये प्रोफेशन है, वोकेशन है। पर ये सब चीजें आज जो हमने सुना, ये सब उसका नेचर होता है, क्वालिटीज होता है। अगर ये सब किसी में है, कम है तो छोटा ब्राह्मण है, ज्यादा है बेटर ब्राह्मण है, बहुत ज्यादा है तो बहुत बड़ा ब्राह्मण है, पूरी की पूरे 100% है तो प्योर ब्राह्मण है। अगर नहीं है तो फिर खाली शर्मा मिश्रा लिख देने से कोई ब्राह्मण नहीं बनता। अगली बार चर्चा करेंगे क्षत्रिय और वैश्य और शूद्रों के बारे में। आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। थैंक यू।